আজকে প্রাতে ক্লাসে 28/6/1963 রিকার্ড চলা হ্যায় দুখিয়ো পর কুছ রহম করো। ভগবান ওয়াচ জব গীতা বেঠ সুনাতে হ্যায় তো কহতে হ্যায় ভগবান ওয়াচ। ভগবান নে বেঠ কর বচ্চোঁ কো সুনায়া থা কুছ, তো উস শাস্ত্র কে লিয়ে কাহা জাতা হ্যায় ভগবান ওয়াচ। ভগবান নে বোলা अब भगवान तो हुआ नई सृष्टि का रचयिता, और नई सृष्टि का रचयिता तो जरूर सुख देने वाला होगा। गाते भी हैं हम दुखी हैं, हमको सुख चाहिए, अब गीता से नई सृष्टि रची गई। परंतु इस बात का इस गीता में कोई वर्णन नहीं है। कि कौन सी नई सृष्टि रची गई, मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है, इसलिए सभी मनुष्य बेसमझ हैं। मनुष्य नहीं समझते हैं, इसलिए बाप ने कह दिया है हम सबसे जास्ती बेसमझ भारतवासियों को समझते हैं। बाप आकर समझाते हैं कि भारत सतयुग के आदि में बहुत सुखी था, परंतु ये बात दुनिया नहीं जानती है। सतयुग का किसी को पता ही नहीं है, तो जिनको पता नहीं है उनको पहचान देनी है कि भारत सतयुग आदि में बहुत सुखी था, वहां देवी देवताएं राजी करते थे। अब वो देवी देवताओं का धर्म किसने और कब स्थापन किया ये किसी को पता नहीं है। और संगम युग भी तो कहते हैं, क्योंकि हर एक युग का भी संगम होता है, परंतु भगवान किस संगम पर आते हैं इस बात का भी कोई को पता नहीं है। भगवान को कहा जाता है रचयिता, वो तो जरूर आवेंगे कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में, जबकि उनको आकर सतयुग व आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। उनके बिगर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना और कोई नहीं कर सकता। नई दुनिया सिवाय क्रिएटर के कोई रच नहीं सकता। परंतु उन्होंने तो गीता में लिख दिया है संभवामि युगे युगे, बिहारी युग में अवतार लेता हूं। अब गीता है भारतवासियों का मुख्य शास्त्र, देवी देवता धर्म भी है आज सतयुग आदि में। बाप ने समझाया है मुख्य चार धर्म हैं, और चारों ही धर्मों के मुख्य चार शास्त्र हैं और गीता हुई आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र, तो ये अच्छी रीति समझाना पड़ता है। पूछना चाहिए कि आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र कौन सा है, ये तो जरूर कहेंगे कि सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र। बाप कहते हैं मैं संगम पर आता हूं, जबकि पुरानी सृष्टि बदल कर नई बनती है, आसुरी सृष्टि से दैवी सृष्टि बननी है। गाते भी हैं, यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानी होती है तब तब मैं आता हूं, और गीता वाले ही ये बात गाते हैं। तो धर्म की ग्लानी सतयुग त्रेता में थोड़ी होती है, और सबसे जास्ती धर्म की ग्लानी तो कलयुग अंत में ही होती है। अनेक धर्म वृद्धि को पाते हैं और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो जाता है। तब ही मैं आता हूं, नई सृष्टि रचने के लिए। तो क्रिएट तो जरूर नई दुनिया ही करूंगा। द्वापर को तो नहीं क्रिएट करूंगा, द्वापर तो द्वैतवादी सृष्टि है, और ऐसे भी नहीं कि मैं सतयुग त्रेता के संगम पर आ सकता हूं। नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ नई दुनिया को क्रिएट करना है। ऐसे भी नहीं त्रेता और द्वापर के बीच में आऊं, वहां भी तो नई दुनिया स्थापन नहीं हो सकती। मैं आता ही तब हूं जब कलयुग का अंत होता है। सब धर्म तमोप्रधान बन जाते हैं, तब एक सद्धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। मुझे क्रिएटर कहा जाता है तो जरूर नई दुनिया ही क्रिएट करूंगा। और ये बात तुम बच्चे ही जानते हो, भगवान तो एक को ही कहा जाता है। भगवान को समझाते मैं आता ही हूं कल्प कल्प के संगम युगे, मैं नई दुनिया का रचयिता हूं, राजाओं का राजा बनाने के लिए आता हूं। तो राजाओं का राजा तो जरूर नारायण ही होगा। मुख्य बात समझानी है कि गीता सर्वशास्त्र में शिरोमणि शास्त्र है और भगवान जरूर कल्प के संगम पर ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ये भी बड़ी भूल है कि एक तो भगवान का नाम बदल लिया, शिव भगवान के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया, दूसरा फिर त्रेता और द्वापर का संगम कृष्ण के लिए कह दिया है। तो क्या मैं तो पुरानी सृष्टि रचने के लिए आता हूं? कृष्ण भगवान अगर द्वापर के अंत में आते हैं तो क्या पापी कलयुग की स्थापना करते हैं? भगवान पाप की दुनिया रचेगा क्या? अभी तुम तो माता पिता कह के बुलाते हो और ये महिमा तो उस परम पिता परमात्मा की ही है। जो मंदिरों में जाकर गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, और घनेरे सुख तो सतयुग आदि में ही होते हैं ना। द्वापर के अंत में कैसे होंगे? कहते हैं आकर दुखियों को सुखी बनाओ, तो अगर मैं द्वापर आदि में आऊं तो सभी तो सुखी बन नहीं सकते। क्योंकि सृष्टि को अति में जरूर जाना है, जब तक अति नहीं होती है तब तक अंत नहीं होता है। सृष्टि तमो प्रधान तो जरूर बननी है। अभी देवी देवता धर्म का जो शास्त्र है वो शास्त्र कोई सतयुग में तो होता नहीं है, जरूर कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच का शास्त्र है। तो ये बात मुख्य रूप से समझानी है। जब कलयुग अंत सतयुग आदि में आए तब ही सारी सृष्टि सुखी हो सकती है। तो गीता है भारतवासियों की माता पिता, सिर्फ ये बात समझ जाए गीता का भगवान कल्प के संगम पर आए थे। भगवान आता ही है स्वर्ग अथवा देवी देवताओं को रचने, ये बात भी जरूर समझानी पड़े। गीता में तो बड़ी भूल कर दिए है, सर्वशास्त्र में तो जरूर नंबर वन भाई बाप होंगे, महिमा सारी गीता की है। बाकी और शास्त्र रामायण आदि में कुछ है नहीं, दंत कथाएं मात्र हैं। सभी भाषाओं में कॉपी करते हैं, परंतु ये पता नहीं है कि भारतवासियों की ही भूल है। 28:63 की वाणी का दूसरा पेज, ये व्यास भारतवासी था, जिसने ही इतनी भारी भूल की है। बाहर के देशों में तो गीता पीछे गई है, तो ये भूल समझाने के लिए भी युक्ति चाहिए। वो युक्तियां, वो पॉइंट्स निकालने पड़े। कहते भी हैं गीता भगवान ने गाई और भगवान ने देवी देवता धर्म की स्थापना की, तो जरूर भगवान कल्प के संगम पर आया होगा। हर युग के अंत में कैसे आवेगा? एक ही बात सिद्ध हो जाए कि गीता संगम पर गाई गई है, तो भी तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। विद्वान पंडित आदि सभी का माथा नीचा हो जाएगा। उनका घमंड ही टूट जाएगा। ये तुम्हारा ज्ञान का बाण है, जिस बाण से घमंड टूट जाता है। और बाप ही बैठे आदि मध्यंत का राज समझाते हैं। बाप ने ही आकर के तीनों कालों का राज समझाया था। तो आदि हुई आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, क्योंकि राम राज्य स्थापन होता है। फिर मध्य में रावण राज्य स्थापन होता है, तो राम राज्य कैसे था? और फिर राम राज्य से रावण राज्य कैसे हुआ? तो मध्य में होता है रावण राज्य, फिर वो आधा कल्प चलता है। आदि से मध्य तक हुआ ब्रह्मा का दिन, फिर मध्य से अंत तक ब्रह्मा की रात, आदि से आधा तक ज्ञान, फिर आधा से आधा तक भक्ति, नहीं आधा से अंत तक भक्ति, पहले तो जरूर नहीं सृष्टि है, परंतु नई सृष्टि पुरानी कब होती है ये मनुष्य नहीं जानते। तो हिसाब करना चाहिए। अगर झाड़ की आयु पांच हजार वर्ष है, तो आधा मध्य में रखना पड़े। तो बाबा आदि, फिर मध्य का ज्ञान सुनाते हैं। बरोबर षष्ठी की आदि में रामराजी शुरू होता है और रामराजी का अर्थ ही है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, पहले सतयुग फिर त्रेता, फिर द्वापर युग से देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है क्योंकि माया प्रवेश कर जाती है। तो माया की प्रवेशता के कारण फिर ये आसुरी संप्रदाय बन पड़ते हैं। पहले तो देवी संप्रदाय थे, तो मुख्य ये समझाने की बात है, आदि में देवी देवताओं का राज्य था, फिर मध्य में क्या हुआ, रावण ने राज्य किया, फिर रावण राज्य में कौन कौन से धर्म स्थापन हुए, सतयुग त्रेता में तो चंद्रवंशी सूर्यवंशी, तो वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म कब स्थापन किया होगा, जरूर कलयुग के अंत का और सतयुग के आदि के मध्य आदि के संगम पर, जिसको कल्प का संगम युग कहा जाता है, द्वापर के बाद फिर अनेक धर्म आते हैं। सतयुग त्रेता में था ही एक देवी देवता धर्म, पीछे द्वापर में फिर और धर्म होते गए, फिर कलयुग में ये छोटे छोटे मटपंट टारटारियां होती जाती हैं। आदि में थे सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर मध्य से देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं, पूज्य देवताएं फिर पुजारी बन जाते हैं और भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। तो भक्ति कब से शुरू होती है, रात होते होते एकदम अंधेरा हो जाता है, तो ये बेहद की रात हुई ना, परंतु ये बातें कौन समझेंगे। इन बातों को वो ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले समझेंगे। उनको ही समझाना है तुम आदि सनातन क्यों कहते हो, आदि सनातन देवता धर्म कहो ना, ये कोई हिंदू धर्म का तो शास्त्र नहीं है। तो ये आदि मध्य अंत का राज कोई मनुष्य नहीं जानते हैं, राम राज्य और रावण राज्य का भी अर्थ नहीं समझते हैं। इस समय रावण राज्य है, गांधी भी समझते थे राम राज्य पूरा हो गया है, नई दुनिया में राम राज्य था, अभी रावण राज्य है, अब हम फिर से राम राज्य को याद करते हैं। तो वो गांधी भी गीता की समझानी देते थे, परंतु उनको ये पता ही नहीं था कि राम राज्य मैं स्थापन करता हूं। वो तो पतित पावन को याद करता था, तो जरूर पतितों को पावन करने के लिए उस बाप को आना पड़े। और संगम पर ही आना पड़े, नहीं तो कब आवे। ये बात मनुष्यों की बुद्धि में नहीं बैठती। और बाबा तो सन्मुख बैठ कितना समझाते हैं, कहते हैं तुम मूर्ख थे, ये दादा भी मूर्ख था, अभी मैं तुमको कितना समझदार मनुष्य से देवता बनाता हूं। तो मनुष्य से देवता बनाने का टाइम भी जरूर वो संगम चाहिए। देवताएं होते हैं सतयुग में, सतयुग त्रेता में है सुखी मनुष्य, और द्वापर कलयुग में है दुखी मनुष्य। पतित पावन परमपिता परमात्मा है, तो अपन को जरूर पति समझना पड़े। परंतु अभी ये बातें मनुष्यों को कौन समझावे। तुम्हारे बिगर संगम है ही ब्राह्मणों का ये छोटा सा युग। वो हरेक युग है 1250 वर्ष का, और ये संगम युग 60 वर्ष का कहेंगे। कैसे? साठ वर्ष का संगम युग कैसे कहेंगे? कब से कब तक? छत्तीस से तो फिर 100 साल हो गया। पतित पावन परम पिता परमात्मा कब आते हैं? है? 36 में आते हैं पतित पावन। है? 76 में आते हैं, तो 76 से 60 वर्ष जोड़े जाए कितना आता है? 2036। तो ये बात समझना चाहिए। कि 60 वर्ष का संगम युग कैसे है, ब्रह्मा के अंत के भी अंत के जन्म वानप्रस्थ में आते हैं। जब तक ब्रह्मा की 100 साल आयु पूरी हो, तब तक बैठ नालिश दी थी। तो नालिश देने का संगम जरूर 40-50 वर्ष का होगा। अच्छा, उथल पथल हो जाए फिर एक नंबर से शुरू होगा। कब हो जाए उथल पथल। चालीस पचास वर्ष नालिश देते हैं, वो चालीस पचास वर्ष तक का नालिश देने का टाइम कब पूरा होता है? है 2018 में पूरी राजधानी स्थापन हो जाती है।
एक पारिवारिक इकाई की
पूरी राजधानी स्थापन होने के लिए 108 की पूरी माला बननी चाहिए। तो उथल पाथल होना तब होता है जब पूरी राजधानी स्थापन हो जाए।
बाबा उथल पाथल माने
सृष्टि लौट पौट होने लगे, उल्टी पलटी होने लगे। आधा कल्प के बाद फिर और धर्म आते हैं। तो भारतवासियों का आदि सनातन धर्म का शास्त्र एक गीता ही है। ये महाभारत कोई शास्त्र नहीं है। और महाभारत में जो युद्ध दिखाया है ये भी तो तुम्हारा माया का युद्ध है। ये बुद्धि योग बल की बात है। 28-63 की वाणी का तीसरा पेज। बाकी लड़ाइयां तो अब होनी है, वो सभी धर्म विनाश हो जाएंगे। कौरवों की लड़ाई है यवनों से, यवनों के बदले उन्होंने फिर पांडवों को ठोक दिया। तो मुख्य बात है गीता भगवान ने कब गाई और किसने गाई। इसलिए बाबा कहते हैं जो देवी देवता धर्म वाले हैं उन्हों को उठाओ। आते तो बहुत हैं, हिंदू महासभा आदि सभाएं तो बहुत बनाई हैं। परंतु मूल पकड़ना है आदि सनातन हिंदू सभा वालों को। कोनों को बताओ कि गीता किस धर्म का शास्त्र है। कि गीता देवी देवता धर्म का शास्त्र है और देवताएं होते ही हैं सतयुग में। वो तो जरूर क्रिएटर ही रचेगा। ये बातें विचार सागर मंथन करने की हैं। संजय भी आया हुआ है, अब उनको पकड़े कहां से। किस अंधे को ज्ञान सुनावे। चिट्ठियों में कुछ लिखो। गीता कृष्ण की नहीं है, भगवान वाच ब्रह्मा द्वारा ऐसे ऐसे चिट्ठी लिखो, फिर सभी को कॉपियां भेजो, तब तो मनुष्य जागेंगे। गीता में है तो रोशनी की बातें, परंतु मनुष्यों ने घोर अंधेरा कर दिया है। कल्प की आयु लंबी कर देने से सभी कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। उनको जगाने के लिए पत्थर मारना पड़े, बड़े अहंकारी हैं, बड़े बड़े टाइटल्स रखवाते रहते हैं, तो हम पकड़े किसको? प्रजा राजा को पकड़ेगी? पांडवों का हेड और कौरवों का हेड, तो हेड को बताना पड़े ये प्रजापिता है और वो है राष्ट्रपिता। समझाना पड़े, आत्माओं का बाप तो है ही अनादि, बाकी ये मनुष्य सृष्टि का प्रजापिता ठहरा। प्रजा माना ही मनुष्य, और आत्माओं को प्रजा नहीं कहेंगे। आत्मा है सन ऑफ परमपिता परमात्मा, क्योंकि गॉड फादर कहते हैं ना ब्रह्मा को, फादर फिर मनुष्य कहेंगे। ये हमारा मनुष्य सृष्टि का बाप है और वो है आत्माओं का बाप, परंतु ये बात भी कोई को पता नहीं है। तुम हो शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुम बच्चों को ये पता है हम अब कल्प के संगम पर हैं। बाबा जब समझाते हैं तो तुम्हारे बुद्धि में बैठता है कि बरोबर हम संगम युग पर हैं। अभी सतयुग में जा रहे हैं ज्ञान योग की यात्रा से। उनको ही कहते हैं तुम माता पिता, हम तुम्हारे बच्चे हैं। बरोबर भारतवासी बच्चे थे जिन्होंने बाप से वर्षा पाया था, बच्चे ही माता पिता कहते हैं। और कहां माता पिता तो कहते ही नहीं है। हाँ, करके एक दो से सुन करके गाते रहते हैं, अर्थ तो बिल्कुल नहीं जानते हैं। वो ही माता पिता फिर आकर सभी बच्चों को सुखी करते हैं। जब तुम बच्चे सुख में थे तो और सभी शांति अर्थात मुक्ति धाम में रहेंगे, और तुम जीवन मुक्ति में रहेंगे। एक धर्म होने के कारण वहां अशांति होती नहीं है, उसको कहा जाता है सुख धाम। वो है शांति धाम, वो है सुख धाम, और ये है दुख धाम। वहां एक धर्म एक मत होने के कारण दुख शांति नहीं होती है। लक्ष्मी नारायण ने आदि सनातन देवी देवता धर्म में जो प्रारब्ध पाई है वो श्रीमत से पाई है। जो प्रारब्ध वहां भोगते हैं तो ये एक श्रीमत हम बाबा से यहां लेते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि हमारी जो हमजिन्स हैं वो बाप से वर्षा कैसे लेवें। प्रोपोगोला गंडा करने वाला होना चाहिए जो बड़ों बड़ों को जगावे। ये अत्याचार कहाँ तक होते रहेंगे? अत्याचार होते ही हैं बिख न मिलने के कारण। यहाँ आते हैं तो कहा जाता है पवित्र बनना पड़ेगा, तो भी उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। पावन सन्यासियों के आगे अथवा पावन देवताओं के आगे सभी पतित माथा टेकते हैं। उनके सामने कितनी भीड़ लगी रहती है। पावन को तो पतित आगे माथा नहीं टेकना पड़ता। तो ये बात बुद्धि में रहनी चाहिए कि अभी दुनिया बदल रही है, ये मुख्य बात है। तो रोज कोई को जाकर के ये दान देना पड़ता है। ऐसे थोड़े ही कि अमृत वेले ही दान करना होता है। मनुष्य कोई दान पुण्य अमृत वेले सिर्फ करते हैं क्या? कोई समय कुछ न कुछ दान तो करते ही रहना है। इसके लिए कोई मुकर्रर टाइम नहीं होता है। बाबा के पास दिन में भी आ जाते हैं तो दिन में भी दान किया जाता है, या तो कोई आकर के दान लेते हैं या तो हमको फिर जाकर के दान देना पड़ता है। अपने घर में ही सारा दिन हट्टी निकाल कर बैठो, जो आवे उनको दान देते रहो। बोलो, ये भगवान की एक ही अविनाशी ज्ञान रत्नों की हट्टी है और कहां भी ये हट्टी नहीं है। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग।